الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں نمبر ایک بات کرو تو سچ بولو نمبر دو وعدہ کرو تو پورا کرو نمبر تین تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو نمبر چار اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو نمبر پانچ اپنی نگاہوں کو پست رکھو نیچی رکھو اور نمبر چھ اپنے ہاتھوں کو روکو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث میں ہمیں چھ بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں ہمارا زندگی کا جو معمول ہے اگر آپ غور کریں تو ان چھ چیزوں کی ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنس ہے اور بڑا واسطہ ہے اس سے ہمارا بات کرنے کے تعلق سے دیکھنے کے تعلق سے وعدہ کرنے کے تعلق سے امانتوں کے تعلق سے شرم و حیا کے تعلق سے بات کی جائے یعنی پورے کے پورا جیسے کہ ایسا لگے گا کہ جیسے مجھے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی زبان کی اپنی آنکھ کی اپنی حیا کے تعلق سے اپنے کمنٹمنٹ کے تعلق سے لوگوں کے ساتھ جو آپ کا واسطہ معاملہ ہے امانتوں کا اس میں معاملہ ہوتا ہے وعدے ہم کسی اور سے کریں گے اپنے سے بھی کرتا ہے بندہ وعدہ تو یوں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی وعدے کرتا ہے تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پر اگر ہم غور کریں اپنے ہاتھوں کو یوز کرتا ہے یعنی اپنے ہاتھوں کو یعنی ساری چیزیں تم شریعت کے مطابق اختیار کرو بولنا سننا معاملات آپس کی جو ہمارا جو ڈیلنگ ہے تو مالک جنت فرماتے تم مجھے ان کی ضمانتوں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اب یہ ہے پوری ڈیٹیل اور بیان میرا اس وقت دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے پروفیشنل فورم کا اور اس کی بھی ایک کیٹیگری بیان کی گئی تھی کہ اس کو بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ اس مجلس کے تحت کون کون ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم لائیو بھی ہیں تو دنیا بھر میں کہاں کہاں ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دیکھ اور سن رہے ہوں گے تو اپنی زندگی میں ان چھ چیزوں کو بڑی ہمیں امپورٹنس دینی ہے آنکھوں کو زبان کو ہماری سوچوں کو حیا کو ان تمام چیزوں کو ہمیں بڑی امپورٹنس دینی ہے اور ہمیں جنت کا سفر اختیار کرنا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. زبان کی حفاظت یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, سچ بولنا کہ جھوٹ نہ بولے. بندہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے, مگر اصل میں بچتا نہیں ہے اور پھنستا ہے. کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. میرا جو خاص آج کا جو موضوع ہے وہ امانت کے تعلق سے ہے, امانت و خیانت. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ یہ ٹاپک لانے کی ایک خاص وجہ ہے, انشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک نے توفیق دی, یاد رہا تو اپنے وقت تو وہ بھی میں بیان کروں گا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ مؤمنون میں ارشاد فرمایا ہے, والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو نیک مومن ہوتے ہیں, اچھی صفات والے مومن ہوتے ہیں, قد افلح المومنون کے ساتھ یہ سورت مبارکہ شروع ہوئی ہے, یعنی فلاح پانے والے مومن, کامیاب مومن. اور فلاح کا لفظ یہاں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے, سکسیس ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, اب یوں کہیں تو قد افلح المومنون, فلاح پانے والے مومن جن کو دنیا میں بھی کامیابی اللہ نے عطا کی اور آخرت میں بھی کامیابی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہے, ان کی کوالٹیز اوصاف خصوصیات لکھی گئی ہیں. تو انہی میں ایک خوبی اسی سورت کی آیت نمبر 8 میں بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں, اور ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے, اور جس سے وعدہ کرے اسے پورا کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ امانت دار ہے اور یہ سچا ہے, اور یہ مشہور ہو جائے کہ یار یہ کمینڈمنٹ وعدہ پورا کرتا ہے, یعنی آپ سمجھیے کہ انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنس ہے اس کی. ہم ڈرتے ہی اس چیز سے کہ یار ایک تو زبان کا پورا نہیں ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا, کچھ رکھوانی اس کے پاس نہیں ہے, یار یہ دے دو تو پھر بھول جا, ملتی ملتی نہیں ہے. یوں سمجھے کہ سارا کیریئر بندہ داؤ پہ لگا دیتا ہے جب اس کی یہ 3-4 باتیں جب کنفرم ہو جاتی ہیں نا. ایک تو سنی سنائی ہوتی ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, پورے کیریئر کو تباہ کرنے والی یہ 3-4 چیزیں ہیں, اسپیشلی 3-4 چیز پورے کیریئر کو تباہ کر دیتی ہیں. کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, ختم. یعنی اعتبار ٹوٹنے کے لیے بندے کا جھوٹ پکڑا جانا کافی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اعتبار, اعتماد یہ ایک ایسا شیشہ ہے, ایک بار ٹوٹتا ہے. آپ کتنی ہی اس کو جوڑ لیں درار کبھی بھی نہیں جائے گی, اس میں آپ کو اپنا چہرہ بریک ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا, اور کوئی بھی آپ کو مطلب یقین دلانے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے سدھر گیا ہو, مگر دل میں اس کے لیے اطمینان نہیں آ پاتا کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا. اور یہ ہے, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کیریئر کو تباہ کرتا ہے یہ جھوٹ. دوسری بات خیانت, تباہ کر کے رکھ دیتا ہے کیریئر, آپ کی پوری لائف کو, جو آپ کی پروفیشنلی, اکنامیکلی, فیملی لائف, سوشل لائف, جو بھی لے لیں آؤ لائف کو. میں نے یہ 3-4 چیزیں جو بیان کی, ایون کہ جو میں حدیث آپ کو سنائی کہ جن میں یہ کمزوری ہیں نا, جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, جن میں یہ کمزوریاں ہیں, سوسائٹی میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی. اس کا کیریئر, اس کی لائف, اس کی فیملی لائف, اس کی بزنس لائف, اس کی ارننگ لائف, ایوری تھنگ. اب اس کے ساتھ اگر کہیں ہے نا, وہ نبھانا ہے کہ یار چوائس نہیں ہمارے پاس, مگر ڈرتے رہنا زندگی بھر, اس کو کبھی گھر نہیں لے جائیں گے کہ یہ بے حیا ہے. یاد رکھیے گا, بے حیا کو کبھی کوئی بندہ گھر نہیں لے جاتا, اور آپ کی بے حیائی آپ کے دوست کے پاس ڈکلیئر ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ 4 لوگوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, اور جب کسی غیر محرم عورت کے تعلق سے بات کرتے ہیں, اس کو تانک جھانک کرتے ہیں, تو آپ کا دوست اگرچہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہے, وہ ہم پیالہ ہم نوالہ ہے بنا ہوا ہے, مگر وہ کبھی آپ کو اپنے گھر نہیں لے جائے گا کہ جو کسی کی ماں بہنوں کو نہیں چھوڑتا وہ میری ماں بہنوں کو کہاں چھوڑے گا. یعنی آپ کی کریڈیبلٹی اور آپ کی جتنی بھی پرسنالٹی ہے نا, वो गई, हालांकि वो भी आपसे गया गुजरा है, मगर जितना ही गया गुजरा हो अपनी माँ बहनों के बारे में गैरत खाता है, कितने ही गया गुजरा हो अपनी माँ बहनों के बारे में गैरत खाता है। लेकिन इन चीजों को बहुत नोटिस देखे बयान किया गया, तुम ये छह चीजों की जमानत हो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। और जो इन छह चीजों पर अमल कर ले उसकी पर्सनैलिटी को आप क्या समझते हैं, उसकी बात कैसी होगी? यार सच्चा आदमी है, सुथरा आदमी है, वादे का पूरा आदमी है, अमानत हो भूल जाओ, 50 साल के बाद भी याद दिला तो मैं तुम्हारी अमानत ही उठाकर दे देगा। वाह हया है, हया में मैंने बहुत सारी बातें ले ली हैं, जो यहां बयान हुई वो भी बात ले ली है मैंने। तो ये जो चीजें हैं कि अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, कहीं आता है जाता है तो अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, कहीं बैठता है तो अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, आवार जैसे जैसे बंदा आवारा होता है ना, तो सोच भी आवारा होती है, जिस तरह सोच आवारा होती है ना इस तरह निगाहें भी आवारा होती हैं। बाज लोगों की निगाहें ही अय्याश होती हैं, निगाहें गंदी चीजें ढूंढ रही होती हैं, उन निगाहों की तस्कीन ही बद निगाही है। कैन यू इमेजिन, यानी बदकिस्मती है उस शख्स की जिसकी आंखों की तस्कीन बद निगाही बन जाए, जब तक बद निगाही करता नहीं है इसकी आंखों को तस्कीन और सुकून नहीं मिलता। हालांकि होना यह चाहिए था कि आंखें काबा देखकर सुकून पाती है, मदीना देखकर सुकून पाती, कुरान को देखकर सुकून पाती, मां को मोहब्बत की नजर से देखकर इन आंखों को सुकून मिलता, मगर क्या करे इस महरूमी और बदकिस्मती का कि उस शख्स के ऊपर के जिसकी आंखें गुनाह करके सुकून पाती हैं, जिसके कान गुनाह सुनकर सुकून पाते हैं, जिसकी जबान गुनाह करके सुकून पाती है। कमाल है, अजीब सी बात है ना, जिसका हाथ गुनाह करके सुकून पाता है, जिसका पांव गुनाह की तरफ जाकर तस्कीन पाता है कि यार अब मेरे को मेरी मंजिल में गए, अब मेरा काम हो गया, और दसो अब क्या बोले भैया, जो होना था वो तो हो गया। यानी ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, हम इसका अपना जायजा लें कि जब तक मैं देख ना लूं, जब तक मैं सुन ना लूं, जब तक मैं ये बोल ना लूं, जब तक ये कर ना लूं, जब तक मैं वहां पहुंच ना जाऊं, जब तक वो खा ना लूं, सुकून नहीं मिलता, ये सारी चीजें जो मेरी डिजायर तो तमन्नाएं बनी हुई हैं, इन सब को इस्लाम ने ममनू मना कर दिया है, गैर शरई हैं, गैर अखलाकी हैं, मगर दिल उधर ही फंसा हुआ है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें अपनी इस्लाह की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। तो याद रखिए, अमानतें ख्वाह अल्लाह पाक की हों या मखलूक की अमानतें, और इसी तरह वादा अल्लाह पाक के साथ हो या मखलूक के साथ, सबकी वफा लाजिम है। ये इस कुरान करीम की जो मैंने आपको आयत नंबर 8 सूरह मोमिनून, इसका तर्जमा है कंजुर इरफान, और फिर इसकी तफसीर मैंने आपके साथ इस वक्त शेयर की है, और साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी और एक ईमान अफरोज और बड़ी सबक कामोज हदीस मैंने अभी आपको बयान की है। तो अल्लाह पाक हमें अमानतों को अदा करने वाला बनाए, अल्लाह पाक हमें खयानत से बचाए। मैं आपके सामने खयानत के ताल्लुक से कुछ एक दो और चंद चीजें अर्ज करता हूं, फिर मजीद तफसील इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं जैसे मैंने कहा कि मेरा जो मौजू है इसकी एक वजह है, क्योंकि जिनके साथ इस जो मेरी मतलब के अभी टारगेट ऑडियंस आप समझ लें, आप जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, या आप ही से रिलेटेड जो इस्लामी भाई दुनिया भर में देख और सुन रहे होंगे, मजलिस तो दुनिया भर में काम करती है जहां जहां कर पाती है या जहां जहां कर रही होती है, हम में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई या तो जॉब करता है, कोई सर्विस करता है, या कोई ना कोई अपनी इसी तरह की चीजें जो वे ऑफ अर्निंग जो हमने इख्तियार किया हुआ होता है, आप सिर्फ उसका एक ख्याल उसको सामने रखिए और जिंदगी के दीगर मामूलात को सामने रखें, चाहे वह प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, या जो भी आपकी है, सब ये ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं बैठे ही हुए हैं, काम कर ही रहे हैं, चाहे फ्रीलांस ही क्यों ना कर रहे हो, हमें किसी ने कोई मतलब मुहैदा तो आपने किया ना, कमेंडमेंट तो आपने की है ना, कोई डील तो आपने की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो आपने किया ही है ना। ऐसे ही खाली खाली तो कुछ भी नहीं हो रहा, या तो आप इजारे पर होंगे या कोई और आपकी मतलब कि किसी तरह से आपने वे ऑफ अर्निंग इख्तियार किया हुआ होगा। तो इन तमाम तर पहलू को, इवन के फैमिली के पहलू को भी, घर के पहलू को भी, हर चीज को इस मौजू के तहत जो मैं इसको बयान करने जा रहा हूं, मेरे हाजरीन भी जो यहां मौजूद हैं फैदान मदीना में, नाजरीन भी, सबके सब बड़ी तवज्जो के साथ अल्लाह करे कि हम सुनने में कामयाब हो जाएं। पहले तो मैं आपके सामने खयानत किसे कहते हैं वो रखने जा रहा हूं, ये इसको समझने की बहुत जरूरत है। ये जो खयानत है ना, ये अमानत की जिद है, अपोजिट, यानी पोशीदा तौर पर किसी का हक मारना, इतनी क्लियर डेफिनेशन है, आदमी वो गौर करता रहे, पोशीदा तौर पर किसी का हक मारना, उसको पता ना चले, उसको पता ना चले, पोशीदा तौर पर किसी का हक मारना ये खयानत कहलाता है, इसको याद कर लें। पोशीदा तौर पर छुपा हुआ, पोशीदा छुपा हुआ, तो ओके आप लोग इसे देखते हैं ना, हिडन एक्सपेंस, छुपे हुए खर्चे, पता ही नहीं चलता कि यार ये कब आ जाता है सामने। तो खुफियतन यानी खुफिया, छुपा हुआ, पोशीदा तौर पर किसी का हक मारना खयानत कहलाता है, ख्वा अपना हक मारे या अल्लाह पाक और उसके रसूल का या इस्लाम का या किसी बंदे का, ये सब खयानत में शामिल है। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह और रसूल से दगा ना करो और ना अपनी अमानतों में दानिशा खयानत, इसे मना फरमा दिया गया। अच्छा, अब आम तौर पर खयानत का जो मफहूम है वो माली अमानत में ही लिया जाता है, किसी ने आपको पैसे रखवाए तो यार वक्त तो वापस कर देना, मगर यहां पर बात बड़ी और खुली है, अमानत का जो तस्वुर है ये और हमारे सामने खुल रहा है। माल के साथ अमानत का ताल्लुक खास नहीं, यानी इसी के साथ नहीं है, किसी के पास माल अमानत रखवाया फिर उसने वापस करने से इनकार कर दिया तो कहा जाता है कि इसने खयानत की, यकीनन ये भी खयानत है, यकीनन ये भी खयानत है, लेकिन खयानत का शरई मफहूम बड़ा वसी है। चुनाच अकीबुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमा लिखते हैं, खयानत सिर्फ माल ही में नहीं, राज, इज्जत, मशवरे तमाम में होती है, और इसकी और दायरेकार है। इवन कि आपको अगर कोई ओहदा मिला, यानी आप कहीं ऐसी जगह पर आप हैं कि जहां पर आप किसी को जॉब दे सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है कि आप जॉब दे सकते हैं, और आपने वहां किसी आहल को जो उसके लिए मेरिट पर आता है उसको छोड़कर आप किसी ऐसे को जॉब दे देते, किसी ऐसे को ओहदा दे देते, किसी ऐसे को जिम्मेदारी देते जो उसका आहल नहीं है, तो आपने अपनी उस जिम्मेदारी के साथ खयानत की। इवन कि आप, हम अपने आप पर खयानत करते हैं अपने हाथों के, मतलब जो कुछ भी हम अपने साथ कई ऐसे रवैये करते हैं जो खयानत में आते हैं। इवन के मशवरे के ताल्लुक से भी फरमाया ना, इवन के इज्जत राज के ताल्लुक से भी फरमाया, आपको किसी ने बात बताई, यार किसी को बता रहा नहीं, अब यार अपना पेट कहां ऐसा कहिए, वो तो अल्लाह के नेक बंदे होते जिसके बारे में कहा जाता है ना कि अबरारों के सीने राजों के दफीने होते हैं, अबरारों के अबरार ये नेक लोगों की औलिया कराम की एक पहचान, एक नाम है अबरार, तो अबरारों के सीने राजों के दफीने होते, कहते बाजों का पेट कवर होता है, बाजों का पेट कवर होता है, बिला इजाजत शरीर खुलता नहीं है, बाजों का पेट खुला ही रहता है, उसको स्टिचिंग की जरूरत है भाई, इसको बंद करो, इसमें कोई बात टिकती ही नहीं है। मैं भी मानता हूं कि जो बातें आपके दो होंठों के दरमियान ना रुकी वो किसी और के पेट में कहां से रुकेंगी, लेकिन फिर राजदार किसको कहते हैं, राजदार किसे कहते हैं? अच्छा, किसी ने आपको अपना नंबर दिया, यार किसी को देना नहीं, लीक हो गया, किसी ने आपको कोई बात की बताना नहीं, लीक हो गई, ऑफिस के अंदर और अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में या दीगर जगह पर, तो इसका तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, जो मर्जी ये करो, जो मर्जी ये बोलो, पता चला ये केकरी बोल देना, पता चला ये केकरी बोल देना। अरे भाई उसने मना किया था, उसने तो आप पर भरोसा किया था, आपने उसका भरोसा तोड़ दिया। और मैं दोबारा बता दूं, एक बार एतमाद टूटता है दोबारा जुड़ता नहीं है। बहुत ज्यादा अक्लमंद और शार्प माइंड लोग होते हैं ना, ये एक बार चोट खाएंगे बार बार चोट नहीं खाएंगे। आप लाख बोलोगे यार इसे यकीन नहीं आता, इसका यकीन आपने तोड़ा है, उसने खुद आपका यकीन नहीं तोड़ा। उसको किसी तरह की मलामत करने के बजाय खुद को कोसो कि तूने ऐसा किया क्यों। और फिर जिंदगी भर आप अपने कैरियर को कोसते रहेंगे, काश के मैं वो गलती ना करता, काश के मैं वो भूल ना करता। बाद वक्त जरूरत आपको और उनके दरमियान कोई कमिटमेंट करवा भी देती है। मैं बहुत क्लोज गुफ्तगू करने जा रहा हूं, सम टाइम कुछ चीजें आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग करवा देती हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उमूमन ये होती है कि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है आपके सिवा। मगर याद रखिएगा कि वो एक खास पहलू जो आपसे वो शेयर करता था लाइफ में कभी नहीं करेगा। कोई खास चीज जो आपके साथ वो रखता था वो लाइफ में कभी भी नहीं करेगा। और बहुत समझदार है तो आपको जिंदगी भर ये समझ भी नहीं आने देगा कि मैं तुम सब क्या क्या चीजें छुपाता हूं। मगर वो आप कर ये मानी ये तय कर लें, ये कभी भी ना भूले कि यार ये भूल गया होगा। ऐसी चीजें बंदा भूलता भूलता नहीं है। किसी ने आपको जोर से खींच के थप्पड़ मारा हो और आप उसके साथ लाख घुलो मिलो, कभी आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इससे मेरा थप्पड़ भुला दिया होगा? कभी मैं कहता थप्पड़ भूल जाएगा बंदा, धोखा कभी भी नहीं भूलता। धोखा नहीं भूलेगा, आपका झूठ कभी नहीं भूलेगा। इतनी क्लोज डिस्कशन है और आपके मेरे कैरियर को, मेरी लाइफ को, मेरे एम्बिशन को, मेरे मिशन को, वॉट एवर यू से, इतना लॉस देती है कि शायद हम उसका तस्वुर ही नहीं करते। हमें पता इसलिए नहीं चलता कि माशरे में ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। मैं अकेला करता तो फंसता ना, मैं अकेला तो हूं नहीं, तुमने भी मेरे साथ उठा है वो दुख, खुश हूं कि राय शोक में तनहा नहीं हूं मैं, तो अकेला तो हूं नहीं, जो मैं करूं सारे सिग्नल तोड़े मैंने भी तोड़ दिया, सारे उल्टा सीधा कर रहे मैंने भी कर दिया। मगर ये याद रखिए कि ये चीजें ऐसी है कि जो भुलाई नहीं जाएंगी, और आप भी कभी भूलना नहीं कि ये भूल गया होगा। ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, कभी भी नहीं भूलना आपके ये भूल गया होगा। वो बेवकूफ थोड़ी है जो भूल गया होगा, इतनी बड़ी बात क्यों भूलता है? आपने उसको इतना बड़ा धोखा दे दिया, इसकी बात क्या लीक कर दी, कभी भी नहीं। मुझे मेरी जात का भी तजर्बा है, कभी भी नहीं। जिसने भी किया है आज के बाद हमारे जहन में वो आदमी की वो चीज बैठी हुई है, नेवर, कभी भी नहीं। ये मैं फैमिली को भी समझा रहा हूं, एक बार शौहर एतमाद तोड़ता है, एक बार बीवी एतमाद तोड़ती है, एक बार बच्चा एतमाद तोड़ता है, एक बार मां बाप का एतमाद टूटता है, एक बार उस्ताद का एतमाद टूटता है, एक बार शागिर्द का एतमाद टूटता है। एतमाद एक ऐसा शीशा है जो एक बार टूटता है, ये बार बार नहीं टूटा करते। और बार तो ऐसा तोड़ते कि खिड़कियां खिड़कियां हो जाता है, उसके बाद वो जुड़ता उड़ता भी नहीं है। याद ये जिंदगी में याद रखने, अल्लाह पाक आपको मुझे महफूज रखे। ये बहुत बुरी आदत है, ये एतमाद तोड़ना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, बंदा खत्म हो जाता। सोसाइटी में रहेंगे कैसे? कोई आप पर बड़ा भरोसा ही नहीं करेगा, कोई आपको बड़ी चीज ही नहीं देगा कि नहीं यार ये आदमी झूठ बोल। स्पेशली जो अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, जो अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो मतलब के यू समझिए कि उससे तो अपना पेट खोलकर आपको दे दिया है ना। मैं एक मुफ्तियाने किराम के बारे में जानता हूं, जितना मेरा माशाल्लाह इनसे राबता वास्ता है, जिन जिन से भी है। आप मुफ्ती साहब के पास चले जाएं, मुफ्ती साहब आपको आपका मसला बताएंगे, लेकिन उन मसाइल में 10 मिसालें देंगे, मगर ये नहीं कहेंगे कि फलां के साथ भी ऐसा हुआ था, फलां के साथ भी ऐसा हुआ था। हालांकि मुफ्ती साहब के पास दुनिया भर की डिटेल मौजूद है, सबने आकर अब कईयों ने आकर अपना पेट खोला है मुफ्ती साहब के पास, लेकिन कभी मुफ्ती साहब को किसी थर्ड का नाम लेकर एग्जाम्पल देता हुआ आप नहीं सुनेंगे। डॉक्टर के पास चले जाएं, आप अपनी हजार कमजोर बीमारियां खोलें, डॉक्टर उस बीमारी के तालुक से ये जरूर कहेगा कि ये बीमारियां हुई हैं लोगों को, लेकिन डॉक्टर साहब कभी भी उस बीमारी के बारे में पर्टिकुलर पर्सन को पिन पॉइंट करके, नॉमिनेट करके नहीं बताएंगे कि ये फला के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था। डॉक्टर भी इस तरह मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूती के साथ लेकर चलते हैं अपने प्रोफेशन में, इसके अलावा दीगर लाइफ में भी इतने मजबूत हैं ये मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, लेकिन अपने प्रोफेशन में एज ए मेडिकली एज ए पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर देखा जाए तो मैंने डॉक्टरों को कभी इस तरह किसी पेशेंट के आगे रुस्वा करते हुए इसके पीछे से देखा सुना है ही नहीं। तो इससे क्या आपका एतमाद बढ़ता है? तो अल्लाह पाक हम सबको खयानत से महफूज रखे, खयानत से महफूज रखे, और अल्लाह पाक हमें अमानत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आपके सामने चंद हदीसें रखता हूं, अब दिल के कानों से इन हदीसों को सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम हमें क्या इरशाद फरमाते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पहली हदीस, जिसमें चार अयूब हों, एब जिनमें चार अयूब हों वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें इन चार में से एक ऐब हो तो उसमें मुनाफकत का ऐब होगा जब तक कि उसे छोड़ ना दे। इनमें से एक जो बयान हुआ, जब अमानत दी जाए तो खयानत करे, इतनी खतरनाक बात है, कैसा डराया गया। ये बुखारी की हदीस थी। अब मुस्तद इमाम अहमद की हदीस सुनिए, जो अमानतदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है अपने पूरे हवालों के साथ, जिस जो अमानतदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं, कितना कमजोर मोमिन है, कितना कमजोर ईमान वाला है वो। नंबर तीन, मोमिन हर आदत अपना सकता है, मोमिन हर आदत अपना सकता है मगर झूठा और खयानत करने वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नंबर चार, हदीस पाक में के जहन नशीन रहे कि खयानत करने वाले की पर्दापोशी करने से बचना भी जरूरी है, ये वजाहत थी। अब हदीस सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खयानत करने वाले की पर्दापोशी करे वो भी इसी ही की तरह है। इतना प्यारा मौजू है, जो खयानत करने वाले की पर्दापोशी करे वो इसी की तरह। असल में है सब जबान का प्रॉब्लम, हमें किसी के बारे में पता चल जाए तो ना ऐब छुपाते हैं ना बुराई छुपाते हैं, बोल पड़ते हैं। तो ये भी आज नियत कर ले कि अपनी जबान की भी हिफाजत करनी है, खास आज ये नियत करके मेरे प्यारे समय उठिएगा कि जबान की हिफाजत करनी है। मैं जबान के ताल्लुक से बड़ी अहम इसमें मेरे पास है, मेरे सामने किताब है आखिरत के हालात, मैं आपको यहां पर दो रिवायतें सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह पर ऐब लगाने वाले, पीठ पीछे बदी करने वाले, चुगली खाने वाले और नेक लोगों पर तोहमत लगाने वालों को अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत कुत्तों की शक्ल में उठाएगा। इतनी इतनी अहमियत है जबान की, चुप रहे, खामोश रहे, अच्छी बात करे वरना चुप रहे। ये घर में भी जो इस्लामी बहनें सुन रही होती हैं, मैं तो क्या इनको अल्लाह और रसूल का वासिता ही दे सकता हूं, मेहरबानी करें, चुप रहें, बर्दाश्त करें, जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। एक और हदीस सुनिए, जो इस हालत में मरा के मुंह पर और पीठ पीछे ऐब बयान करने वाला और लोगों के बुरे नाम रखने वाला था, तो बरोज़े क़यामत उसकी अलामत, उसकी साइन, उसकी पहचान, उसकी निशानी यह होगी कि अल्लाह पाक इसकी दोनों बाछों, बाछे इसको कहेंगे, अल्लाह पाक इसकी दोनों बाछों से लेकर इसकी नाक तक दाग लगेगा, दाग लगाएगा, इसकी निशानी होगी कि ये वो शख्स है जो मुंह पर और पीठ पीछे ऐब बयान करने वाला था और लोगों के बुरे नाम रखने वाला था। ये है जबान का मामला। अब आप जहां भी हैं, जिधर भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस पर हैं, अपनी किसी भी फील्ड में हैं, जबान की हमेशा हिफाजत करें, और अल्लाह ना करे किसी का ऐब आप पर जाहिर होता है और होते हैं, छुपाएं। हम किसी का ऐब छुपाएंगे, अल्लाह पाक हमारे ऐबों पर पर्दा रखेगा। ہم کسی کا عیب بیان کرتے تو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ مجھ میں اس سے زیادہ عیب ہے؟ اچھا خود یہ عیب بیان کرنا کتنا بڑا عیب ہے؟ میں کسی کا عیب بیان کروں، یہ بیان کرنا میرا کتنا بڑا عیب ہے؟ اچھا اس، اچھا ہم بیان اس کا جو عیب سن رہے ہیں، اچھا او ہو ایسا نہیں یار، واقعی یقین نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ پر یقین نہیں آتا کہ آپ اتنے بے شرم، بے حیا اور بے غیرت ہیں کہ ایک مسلمان کی اتنی برائی ہو رہی ہے اور آپ یقین نہیں آتا. ارے مجھے آپ پر یقین نہیں آتا کہ آپ اتنے بے شرم کیسے ہو گئے کہ آپ کی آنکھوں، آپ کے سامنے ایک مسلمان کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اس کا عیب اچھالا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور آپ مزے لے رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو یقین نہیں آ رہا. ہمیں تو آپ پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ کدھر کے شریف آدمی ہو. اگر آپ پہ کہیں بھی شرافت ہوتی ہے، غیرت ہوتی، حیا ہوتی، تو کیا آپ اپنے منہ کے سامنے کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی برائی کان لگا کر سنتے؟ نہیں یار سننی پڑتی. کیوں سننی پڑتی؟ ارے یار بیڑا بڑا ہے، سنیں گے تھوڑا اس کا مطلب کہ مکھن مکھن لگائیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے. تمہیں دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر ہے، تمہیں جہنم میں گرنے کا ڈر نہیں، تمہیں اس کو راضی کرنے کی فکر ہے، تمہیں رب کی ناراضگی کا ڈر نہیں. چاپلوس بن گئے ہو، کیا بن گئے ہو؟ حالانکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اپنے کو پسند ہی نہیں ہے. خوشامد، چاپلوسی، یہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم کو چاپلوس بولے، خوشامد بولے. مگر تھوڑا جھانک کر دیکھے کہ میرے اپنے اندر کتنی چاپلوسی ہے، میرے اندر کتنی منافقت ہے، میرے اندر کتنی بے شرمی ہے، میرے اندر کتنی بے حیائی ہے، میرے اندر کتنی نالائکی ہے کہ میں مطلب کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ہو جائے. ارے نادان، رزق اس کے ہاتھ میں نہیں، رزق تیرے رب کے دستے قدرت میں. تو کس چیز کی وجہ سے اس کو راضی کر رہا ہے؟ نہ اس کے ہاتھ میں تیری عزت، نہ اس کے ہاتھ میں تیری ذلت، نہ اس کے ہاتھ میں تیری زندگی، نہ اس کے ہاتھ میں تیری موت، نہ اس کے ہاتھ میں جنت، نہ اس کے ہاتھ میں جہنم، نہ اس کے ہاتھ میں رزق کی کشادگی، نہ اس کے ہاتھ میں رزق کی تنگی. وہ تو سب کچھ تیرے رب کے دستے قدرت میں. وہ اپنے رب پر یقین رکھ. تیری عزت و ذلت تیرے رب کے، یعنی ہماری ذلت، ہماری عزت اس کا مالک کون؟ زندگی اور موت کا مالک کون؟ جنت و جہنم کا مالک کون؟ رزق میں کشادگی دینا نہ دینا مالک کون؟ اولاد دینا نہ دینا مالک کون؟ بیٹی دینے والا، بیٹا دینے والا کون؟ اللہ پاک. تم اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے تم مخلوق کو راضی کرنے میں لگ گئے، وہ بھی اس طرح کہ رب کو ناراض کر کے. ارے نادار، کچھ ہوش کے ناخن لے. تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو مال کمانے اور اپنی دنیا بنانے میں اس رب کو ناراض کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہم نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں، جو بھی ہمارے اس طرح کا لائف سٹائل ہے، کئیوں کو بہت کچھ ملا ہوا ہے. میرے پیارے سہن بھائیوں، میرا کئی دنیا میں کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، ملتا ہوں، باتیں ہوتی ہیں، میں ایک بات ابزرو کر چکا ہوں، لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، کہیں مطلب جیسے کہتے ہیں کہ بس نہیں آج گھبر، وہ مزہ نہیں آ رہا. ایک جملہ ہے، مزہ نہیں آ رہا، بہت کچھ ہے، مزہ نہیں آ رہا. ارے بھائی مزہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی مزہ آتا ہے کیا؟ سب کو راضی کرو بھائی. زندگی کے ایک مقصد بنا لینا چاہیے ہم کو، ایم آف لائف جس کہتے ہیں، واٹ از دا ایم آف لائف. بچپن سے جب سے ہم نے اسکول کی پڑھائی کی ہے، ایک ہمیں ایسے ملتا تھا ایم آف لائف، واٹس یور ایم آف لائف. وہاں پھر ہمیں جو جو سکھایا جاتا تھا، کوئی پائلٹ لکھتا تھا تو کوئی کیا لکھتا تھا، کوئی کیا لکھتا تھا، کوئی کچھ اور لکھتا تھا. ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ٹاپک ملتا تھا ایسے لکھنے کے لیے، مضمون لکھنے کے لیے، اس کا نام ہی یہ تھا ایم آف لائف. یہ تو دعوت اسلامی نے بتایا کہ ایم آف لائف کا جب بھی تمہیں موضوع ملے تو اس کے نیچے ایک ہی لائن لکھنی ہے کہ میرے رب کو راضی کر کے جنت چاہتا ہوں. دعوت اسلامی نے ایم آف لائف ایک ہی دے دیا مجھے. کوئی لمبا چوڑا مضمون لکھنے کی اس کے اندر مجھے ضرورت نہیں ہے. کوئی مجھے پوچھے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا، تو مجھے دعوت اسلامی نے سکھایا ہے کہ میں نیچے لکھ دوں اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا. یہ میرا ایم آف لائف ہے، یہ میرا گول ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے، میں اسی کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. جب میں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کروں گا، اپنا گول سیٹ کروں گا، تو اس کا روڈ میپ بھی میں بناؤں گا نا. ایسا تو ہے نہیں کہ جانا مدینے میں ہو، یاری پہ بیٹھو کسی اور کی، کہ جو مدینے جا ہی نہیں رہی ہے. जो मैंने जाना ही मदीने में है तो मैंने फ्लैट भी मदीने की लेनी है, जो मुझे मदीने लेके जाए, जो मुझे इस रास्ते पे लेके जाए। हम सब जमा होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर तब्दीलियां आ जाएं, क्योंकि नेक बनने का एक शॉर्टकट है। मैं आपको बताऊं, नेक बनने का एक शॉर्टकट है, नेक बनाना शुरू कर दो। मैं आपको 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 यकीन ना आए, मतलब आप करके देखे, कहते ना पैसे वापस अगर वसूली, आप करके तो देखें, आप दर्द देके देखें, आप नेकी की दावत देके देखें। ये मैं आपको नेक बनने का शॉर्टकट बता रहा हूं। अरे बंदे को हया आती है, शर्म आती है, तू तो कुछ कर, है ना, तू तो कुछ कर, हया आ जाती है। और बड़ा मतलब कि बंदा निकल पड़ता है रास्ते पर, बड़ों बड़ों को देखा है, निकल पड़ते हैं रास्ते पर। अब जहां भी दर्श देना शुरू करें, नेकी की दावत देना शुरू करें, मस्जिद की तरफ लाना शुरू करें, सच की दावत देना शुरू करें, अच्छाई की दावत देना शुरू करें, किसी और के लिए रास्ता खुले तो खुले, मेरे रब ने चाह तो इस नेकी की दावत देने वाले के लिए रास्ता खुल जाता है। अब भी से खुद को नेकी की दावत दे दे के यार चेंज, तो पहले खुद को चेंज, तो फिर चेंज ही चेंज है, चेंज होता ही खुद से, वरना तो चेंज नहीं आता। तो अल्लाह पाक हम सबको खयानत से बचाए और अमानत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। हम जहां भी रहें, जिधर भी रहें, हर चीज में अल्लाह पाक को राजी करने वाला रखें। एक और हदीस सुनिए, हम तुम में से जिसे किसी काम पर आमिल बनाएं, हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम तुम में से जिसे किसी काम पर आमिल बनाएं, जिम्मेदारी दे, मुकर्रर करेंगे ये काम करकर आ जाओ, फिर वो हमसे सुई, निडिल कहते हैं सुई, या इससे ज्यादा छुपा ले, तो ये भी खयानत है जिसे वो कयामत के दिन लाएगा। अब इस तरह की कई रिवायत है, ये बेसिकली तो जो सदकात वसूल करने के लिए जो आमिल मुकर्रर किए जाते थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो ये उनके लिए खास है। लेकिन मैंने इस तरह की कई रिवायतें पढ़ी, मैं इंशाल्लाह आपको रिवायतें सुनाने भी जा रहा हूं। तो मैंने इस पर बाकायदा, क्योंकि जब हदीस हम पढ़ेंगे तो इस हदीस से क्या क्या माना निकल सकता है या क्या कैसी एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो हम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए अहले इल्म से रुजू, जिस तरह आप दवा लेते हुए डॉक्टर से रुजू करते हैं ना, इस तरह हमें अहले इल्म से, मुफ्ती से, एक आलिम से रुजू करना पड़ता है कि ये जो हदीस पढ़ी है इसमें ये चीजें हैं, क्या इसमें ये मजामीन है, ये बातें भी आ जाती हैं। तो फिर मैं जब बयान की तैयारी कर रहा था तो मैंने इस तरह की हदीसें पढ़ी, और इसके पीछे बाकायदा एक मेरी सोच थी जो मैंने कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा, वो इंशाल्लाह मैं आपको हदीसें सुनाता हूँ। लेकिन पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूँ, फिर एक मुसलसल आप कुछ हदीसें सुनिएगा, अल्लाह पाक अमल की तौफीक भी अता करे। कि मैं यूं समझिए कि ऑस्ट्रेलिया का मेरा विजिट था, तो वहां बैठा था तो कुछ बातें हुई, हालात ये वो, ये बिगाड़ तो ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे बता रहे थे आप क्या कर रहे हैं, अब यूं करें, अब यूं करें। अब उमूमा इस तरह की बातें मैं जब सफर में होता हूं आगे पीछे तो मिलते हैं, दर्द होता है, ये भी इनका दर्द होता है, इनकी फीलिंग होती है, मगर इनमें से एक तादाद है जो प्रैक्टिकल नहीं है। वो हमसे बात करेगी, फिर घर पे जाएगी, सो जाएगी, सुबह उठेगी, वही कामकाज कारोबार करेगी, फिर कोई न्यूज़ व्यूज़ आएगी, कुछ पोस्ट वगैरह आएगी, कुछ खबर वबर आएगी, यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, फिर बैठ कर दो घंटे तीन घंटे आपस में बहस करेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, इसकी लगाई उसकी बुझाई ये वो करेंगे, कुछ नहीं हो रहा, सारे ऐसे ही हैं, सारे वैसे ही हैं, बिल पेमेंट करेंगे, बाहर जाकर कुछ बदकिस्मत लोग सिगरेटें फूकेंगे, फिर दो चार बातें करेंगे फुटपाथ पर, दो चार घंटे वहां खड़े हो जाएंगे, फिर हाथ मिलाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक जर्नल कल्चर बयान कर रहा हूं, ये जो मतलब कि बिल्कुल ये मतलब कि ये तब ये हजरात जो है ना, ये तबसरा, इनसे तबसरे करवाएं, इनसे जायजे, ये तजिये करेंगे और इनसे बड़े बड़े तजिये करवा लें मैं सबका नहीं कह रहा लेकिन एक तादाद है, लेकिन चलो इसको यूं कह लेते इनका भी एक दर्द कुछ होना चाहिए। तो मुझे इसी तरह के कुछ लोग मिलते हैं, सबके सब ऐसे नहीं होते कि बात होते हैं जब जिसको कहते ना कि हमको देखकर कुछ और याद आता है, डॉक्टर को देखकर बीमारी याद आ जाती है, तो कुछ ना कुछ याद आ जाता है, मौलाना क्या कर रहे हैं, तंजीम क्या कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, इस तरह हमें मिलते हैं लोग, आप लोग क्या कर रहे हो, इतना ये हो गया दुनिया में, ये हो गया फला इधर, ये हो गया, आप तो कुछ करो। ये मेरे को ऐसे दो तीन केस सामने आए, एक तो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ लोग के साथ, मेरी इस्लामी भाइयों के साथ हमारे मजलिस ने जमा किया था, वो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारे इस्लामी भाई जमा हुए थे, सवाल जवाब हुए तो उन्होंने कहा फला जगह यूं हो रहा है, फला जगह यूं हो रहा है, हमें यूं वहां जाना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें यूं यूं होना चाहिए। हाँ उसका अपना पैशन था, उसकी अपनी फीलिंग थी, उसके अपने जज्बात थे, मैं भी सुनता रहा, अपनी बारी आवे तो अपने ही बोले। तो फिर मेरी बारी आई, क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, और इतनी दूर की बेचारे ने बात की थी, वीजा भी ना मिले। तो मैंने कहा यार आप कहां होते हैं, अब जरा समझिएगा आप, मैं कई आपको यूं समझे घुमा फिराकर अब किसी एक तरफ लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा आप कहां होते हैं, तो इन्होंने कहा मैं फला जगह होता हूं। मैंने कहा आपकी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, जहां का आप कह रहे उसे ज्यादा हो रहा है, कुछ चीजों से ज्यादा हो रही है, हां देखो फुट स्टेप पर है, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई ट्रेवलिंग नहीं चाहिए, फुट स्टेप पर है, आंखों के सामने, हाथ बढ़ाओ रोक लो। मेरे भाई जब ये नहीं रोक रहे तो इतनी दूर जाकर क्यों बातें कर रहे हो, ये सामने है। अच्छा वहां कुछ नहीं कर सकते, घर के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, महल्ले के अंदर, अपने पड़ोसी को देख लो, इतना मतलब के दूर जाना जिसके लिए एम्बेसी के धक्के खाओ और फिर भी वीजा ना मिले, और जहां अगर वीजा मिल भी जाए तो कोई सुनने वाला ना हो, वो रास्ता दिखाने वाला ना हो, तो भाई ये बिल्कुल हाथ बढ़ाओ, बुराई सामने खड़ी है, रोको ना, जबान चला बिगैर माइक की आवाज जाएगी, इतना करीब गुनाह हो रहा है, बोलो ना, वो आपके मातहत है, बोलोगे तो शायद समझ जाएगा, समझाओ ना, इतने करीब करीब काम नहीं हो रहे। लेकिन चूंकि बाद विजन बहुत बड़ा है, जिसको हम कहते हैं यार इसका विजन वो बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, अरे भैया कुछ लॉजिक तो लाइए यार, ये जज्बात है, ये क्या हम लोगों के जज्बात हैं, ये इधर से सुनते उधर से सुनते हैं, ये कवरेज, ये मीडिया तो, ये पोस्ट तो, ये हालात, ये हाजरा, ये सारे का सारा होता है, ये हाजरा का फिर माजरा, फिर माजरे का फिर सारा कुछ हो जाता है, बंदा सोता रहता करे क्या, फिर आखिर में कहता है अब होना होना कुछ भी नहीं है, चल यार घर चलते, सो जाते, अपना किया एक जुमला के अपना किया, ओ भाई तो भी इतनी देर क्यों घंटे बर्बाद किए, जिक्रुल्लाह करता एक बार सुखान अल्लाह कहता, अल्लाह का जिक्र करता तो अल्लाह पाक जन्नत में तेरे लिए दरख्त लगा देता, और आपकी आंखों के सामने है ना, घर के अंदर बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, घर में बेहयाई हो रही है, टीवी पर बेहयाई हो रही है, अपनी अम्मी को कुछ नेकी की दावत दे दो, बाजी को नेकी की दावत दे दो, अबू को नेकी की दावत दे दो, पड़ोसी इतने सारे हजारों पड़ोसी हैं आपके महल्ले इलाके के अंदर, वहां दे दो, मस्जिद में जाओ तो एक सफ भी पूरी नहीं भर रही है, सारी मस्जिद खाली पड़ी हुई है, पूरा महला मुसलमानों का है, आपके महल्ले में जुए के अड्डे हैं, शराब के अड्डे हैं, नौजवान नशे के आदि बन रहे हैं, बच्चियां नशे की आदि बन रही हैं, ये कुछ नजर नहीं आ रहा कि महल्ले इलाके में मेरे को नेकी की दावत देकर, हया और का दर्श देकर, को फैजान सोए का दर्श देकर, को नेकी की दावत देकर इज्तिमा में लाकर ये कुछ सिलसिला शुरू तो करूं। अमीर सुन्नत ने मस्जिद से ही तो काम शुरू किया, महल्ले से तो काम शुरू किया था, भाई पहले कोई बीज तो डालो, डायरेक्ट दरख्त और फल, ख्वाब में तो होगा, ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी बीज है, बीज रियलिटी पौधा है, रियलिटी ये है कि पहले उसको पानी देना पड़ता है, पहले उसकी निगहदाश्त करनी पड़ती है, पहले उसे पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, उसकी निगहदाश्त करनी पड़ती है, ये रियलिटी है, फिर वक्त का इंतजार करो जब ये आपके पानी देने का नहीं खुद अपना पानी निकालने का अहल बन जाता है, डायरेक्ट दरख्त की बातें करेंगे। तो ये इस तरह ये हुआ, फिर एक और जगह इसी तरह का वास्ता हुआ, तो खैर मैंने उनको उनको कह सकते हैं कि शायद बीसियों जगह पर मैंने बातें बयान की हैं, जिसका मैं आज आपके सामने खुलासा बयान करने जा रहा हूं। तो उसका खुलासा यह है कि जो कुछ आप दुनिया भर में या कहीं कहीं भी आप बुराइयां या खराबियां देख रहे हैं, और जिस जगह पर देख रहे हैं, जिन डिपार्टमेंट्स में देख रहे हैं, जिन एरियाज में आप देख रहे हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेता, ठीक है, आप समझ सकते हैं, कुछ चीजें सिर्फ समझाई जा सकती हैं इशारों में। बहुत से इशारे ऐसे होते हैं जो इबारत से ज्यादा बलीग होते हैं। वो कहते हैं दानिशमंदारा इशारा काफी अस। तो ये हो रहा, आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा यार ये जितने लोग जिनके आप तस्करा कर रहे हैं, ये निकले कहां से, कहां से निकलते हैं, ये कहां से पहुंचते हैं वहां पर, स्कूल से, कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और उसके आगे जो भी स्पेशलाइज लोग करते हैं, या ये है असल, तो मतलब कि यहीं से निकलता है ना। मैं कहा हम वहां जाकर काम करते हैं। अगर इस मकाम पर जहां का मैं कह रहा हूं अमानत, खौफ खुदा, इश्क रसूल, एहसास जिम्मेदारी, खुदा का सच्चा खौफ, इस तरह की चीजें अगर आज बुनियाद में डाल दें आप, तो ये निकलकर किसी भी पोस्ट पर चला जाए दुनिया भर में, आपको लगता है कि यह आदमी बददियानती करेगा, यह आदमी जुल्म करेगा, यह आदमी ज्यादती करेगा, ये किसी का हक खाएगा, ना हक काम करेगा, रिश्वत लेगा, सूद में पड़ेगा, यतीमों का माल खाएगा, बेवा का माल खाएगा, लोगों की ज़कातें खा जाएगा, अपने सेठ की ये मतलब कि इसके पीछे इसकी पीठ पे छुरा घोंपेगा, अवाम के साथ बददियानती करेगा? नहीं। वो दुख जो आपको हैं, आप कहते हैं जरा यू करो कुछ हो जाएगा, भाई पत्तों पर पानी डालना बंद करो, जड़ों में पानी डालो, जड़ों में। ये मुश्किल काम है जो मैं कह रहा हूं, पाइप लेकर ये तो ठीक है, तो भाई ये तो यहां बेस है मेरी, जब शोभा तालीम करना, मेरे शोबे को भी सलामत रखे, इन्होंने मेरे यूनिवर्सिटी में बयान करा है, मैंने वहां भी इनको भी यही कहा, मैंने कहा आप लोग जो जाएंगे आगे कहीं ना कहीं, अगर वो भी जॉब मिली या कुछ भी अपना काम किया, अपना बिजनेस भी किया, अगर दिल में सही मायना में खौफ खुदा होगा, सही तौर पर इश्क रसूल रचा बसा होगा, और इस अमानत का पहलू आपके पेश नजर होगा कि मैंने खयानत नहीं करनी, और खयानत का सारा तसव्वुर जो मैंने कहा ना, मैं बयान जहन में कोई एक मरकजी तौर पर एक बात थी, और मैं ये चाहूंगा कि मैं आप तक ये बात जो पहुंचा रहा हूं, और तो आपके जरिए बात कहां कहां तक पहुंचे, आप भी तो कहीं बैठे ही हुए ना, नहीं है तो कहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ अमानतें आपके सिपुर तो होंगी जो ये अमानत का तस्वुर मैंने बयान किया है, कुछ ना कुछ अमानतें आपके भी सुपुर्द होंगी, एज ए मुलाजिमत आपके सुपुर्द होंगी, एज ए अथॉरिटी आपके सुपुर्द होंगी, किसी के साथ कोई तो कमेंटमेंट आपने किया हुआ होगा जिसकी वजह से आपको कुछ रकम मिल रही होगी, उससे ये कमेंटमेंट तो नहीं होगा कि मैं आपको धोखा दूंगा, कितने रुपए दोगे, महीने में एक बार खयानत करूंगा, कोई ऐसी बात तो करता ही नहीं है ना। तो जिस चीज की आप ये चीज कर रहे हैं तो उसमें अमानत है या नहीं है, और कोई खयानत तो नहीं आ गई है, तो आदमी कहां का जाकर बैठता है, क्या क्या काम करता है, कैसी कैसी जिम्मेदारियां होती हैं, मगर चूंकि वो अपने रब की नाफरमानी करता है, खयानत करता है, तो अब मैं आपके सामने एक हदीस बयान करने जा रहा हूं, उसको आप अमानत और उसकी खयानत के तौर पर अब चेक करना शुरू करें, और आज ये नियत कर लें कि मैं जहां भी हूं वह अमीन बन के रहूंगा, कि मैं जिसका गुलाम हूं उसका लकब अमीन है, उसे अमीन और सादिक कहा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, अब दिल के कानों से कुछ रिवायतें सुनिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुल्मन बालिश बराबर जमीन ली होगी, जुल्मन बालिश बराबर जमीन ली होगी, بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں ساتوں زمین کا توک ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑی خیانت ناحق لی گئی. ایک ہاتھ زمین ہے, تم دو مردوں کو مکان یا زمین میں شریک پاؤ, پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کی حق میں سے ایک ہاتھ جتنی زمین دبا لے تو اس نے قیامت کے دن اپنے لیے سات زمینوں کا توک الگ کر لیا. یہ اتنی ڈرانے والی حدیث ہے. ایک اور روایت سنیے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک کنویں کے پاس سے ہوا جس سے کھیت سیراب کیا جاتا تھا, کھیت میں پانی ڈالا جاتا تھا اس کنویں سے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کنویں کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو بروز قیامت اسے اٹھائے ہوئے آئے گا. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے خیانت کے تعلق سے, امانت ادا کرو. جو آپ کو مجھے ذمہ داری ملتی ہے اپنے رب سے ڈرنا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ادھر کی ادھر ہو نہ جائے. اسپیشلی جب آپ کہیں اتھارٹی بنتے ہیں, نگران بنتے ہیں, اس طرح کی کوئی آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران بنایا گیا, جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران بنایا گیا, بروز قیامت اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے 7 بندے ہوں گے, حتیٰ کہ اس کے اور دیگر لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمایا جائے گا. 10 آدمیوں پر اگر کوئی نگران بنتا ہے تو یہ بڑا بننا کا ہے ہمارا, ہے کہ یار میں اتنے لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوں, اتنے ہوں, اتنے ہوں, اتنے ہوں. پھر یہ کہ یار میرے اختیارات کیا ہیں. ایک تو آدمی یہ بڑا ادھر پرابلم ہے, یار میرے اختیارات کیا ہیں. میں نے تو آج یہ سمجھا ہے کہ بندہ بے اختیار کامیاب ہے, اپنے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. شاید یہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے آپ کے جو میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ بندہ اختیار والا ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے, اس کو وہ ڈر کے مارے کہیں کا نہیں ہے, کیونکہ اسے پوچھے بغیر کام ہونا نہیں ہے. اب اس نے جو ہاں کہا ہے وہ صحیح یا غلط, گناہ جاریہ ثواب جاریہ, حق یا نا حق, درست یا غلط, میرے کو بہت واسطہ پڑا ہے. اختیارات کیا ہوں گے, لے لے بھیا جتنے چاہیے لے لے. تم نے پھر پڑھائی کچھ نہیں ہے, تمہیں اپنے کندھے پر اتنا بوجھ اٹھانے کی لگتا عادت پڑ گئی ہے. میں اس پر زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتا, اللہ کرے کہ آپ میری بات یہیں پر سمجھ گئے ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو 3 آدمیوں کا بھی نگران رہا ہوگا وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ بندہ ہوگا, اس کا عدل انصاف اسے چھڑا لے گا, یا پھر اس کا ظلم اسے توک ڈلوا دے گا. اتھورائز ہونا آسان نہیں ہے, اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ پر ہم ذمہ دار ضرور ہیں. تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی. اس حدیث کی ایک اور خوبصورتی میں آپ کو بتاؤں, یہ حدیث اسلام و دین کی بڑی پیاری تعلیم دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. سیٹ, ملازم, بیوی, شوہر, بچے, ماں باپ, ماں باپ کے معاملے میں بچے, بچوں کے معاملے میں ماں باپ, شوہر کے معاملے میں بیوی, بیوی کے معاملے میں شوہر, سیٹ, نوکر, سب, ہر کوئی, بڑا چھوٹا, وزیر, اس کے نیچے, اتھارٹی, قیادت, اقتدار, سمجھ رہے ہیں, ریاست, حکومت, ایوری تھنگ. یعنی کیا, اوپر سے لے کر آئیں, گھر کے اندر آئیں, گھر میں ماں باپ کے ساتھ آئیں, ماں باپ سے اولاد کے ساتھ آئیں, استاد کے ساتھ آئیں, ٹیچر کے ساتھ آئیں, تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا کہتے ہیں, کوشچنیبل, ہر شخص کوشچنیبل ہے, یہی کہا جائے گا, پوچھا جائے گا, پرسش ہوگی, ہر ایک رسپانسیبل بنا دیا گیا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم ناٹ رسپانسیبل. ہاؤ کین یو سے دیٹ, کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. تمہیں اسلام و دین ذمہ دار بناتا ہے. تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی ہے, तुम में से हर एक से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा अब हर एक को ध्यानना जरूरी है कि मैं जिस जिम्मेदारी पर हूं, जो जो जिम्मेदारियां मुझे हैं, बिफोर द मैरिड आफ्टर द मैरिड, बिफोर द फादर आफ्टर द फादर, आप जो कुछ भी हैं, तो जैसे जैसे आपका फैमिली डेजिग्नेशन बन रहा है ना, राइट, ये फैमिली डेजिग्नेशन है कि मैं शोहर था, मैं एक आम आदमी था, मैं शोहर नहीं था, मैं शोहर हो गया हूं, मैं शोर हो गया हूं। अरे भैया शोर हो गए, कबूले कबूले कबूले, हमें भी कबूले भैया, बन जाओ शोर, जिम्मेदार बन गए। एक और जिम्मेदारी आ गई, निभाओ बीवी की जिम्मेदारी, वो भी कहती है कबूल है, इशारे कर दे, जो मतलब जो कबूल है हो गई बीवी, अब बनाओ निभाओ शोर की जिम्मेदारी। अब 60-150 साल 2 साल के वाला अता करे तो वो बाप बन जाता है, फैमिली डेजिग्नेशन, राइट, क्योंकि हर कोई ऑफिस या घर में जरूरी है लेकिन सब घर में है, ये फैमिली डेजिग्नेशन है, फैमिली पोस्ट है, जो आप पहले शोहर की पोस्ट पर आए, क्योंकि मेरे सामने इस्लामी भाई है तो मैं इन्हीं से बात कर, इस्लामी बहने अपने ऊपर गौर करती रहे, तो आप फिर वालिद बने, आपका एक ग्रेड बढ़ गया ना, एक स्टार बढ़ गया, नाउ यू बिकम अ फादर, जब आपको अच्छी न्यूज मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा, तो अच्छा उसके लिए भी तैयारी नहीं है, हालांकि न्यूज तो कई महीनों पहले आपके कान में आ चुकी थी, इंशाल्लाह ताला आप वालिद साहब बन जाएंगे, बेटी होगी या बेटा होगा। अब एज ए फादर मैंने कभी स्टडी नहीं की कि अल्लाह पाक अता कर दे और एक हुए हुए कर्जा हुआ, खुद रोता हुआ मेरे चेहरे पर मुस्कुराटे लाता हुआ, जब मेरे घर में बच्चा आएगा तो घर में खुशियां होंगी, तो उस वक्त उस घड़ी से मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? पैसे वैसे तो मिलने नहीं है, वहां पर क्या स्टडी करेगा, राइट? मगर ऑटोमेशन सिस्टम, ये लाइफ का ऑटोमेशन सिस्टम है जो ऑटो अपग्रेड है। अब फादर हो गए, अब बच्चे बड़े हुए, अच्छा फादर में भी फिर एक बच्चे का, दो बच्चे का, बेटी का, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमान ने 70 से ज्यादा बेटे के, जिसमें बेटियों के भी शामिल हैं, ये सारे हुकूक आला हज़रत ने अपने रिसाले में अता किए, कभी माँ बाप ने पढ़ा इसको नहीं, हालांकि ये इनका डेजिग्नेशन है, पढ़े तो सही, तुमसे तुम्हारे मातहत के बारे में पूछा जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा। अच्छा अब आगे बढ़े, जनाब बच्चों की शादी हो गई, अब हो गए अब मोहतरम जनाब सुसर साहब, अरे वाह क्या ग्रेड है, क्या पोस्ट मिली है सुसर साहब, बन जाए भैया सुसर। अब सुसर क्या होता है, कभी सुसरपुर खतर भी होता है, सुसर की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या सुसर बनने के बाद बंदा क्या मतलब कि बेहरा और अंधा हो जाता है, जो कुछ भी होता है उसको पता ही कुछ नहीं है, परवाह ही कुछ नहीं है, क्या है सुसर ये? अच्छा इसके बाद अल्लाह पाक आपकी औलाद को औलाद देता है, ओए ओए अब तो जनाब नाना बन गया, दादा बन गया, ये जितनी भी फैमिली अपग्रेड और आपकी डेजिग्नेशन बन रही है, आप यकीन माने आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, इसको इसको समझ लें, ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें नाना हसनैन कहते हैं, आप इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपके नवासे हैं, जब इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि नाना जान रहमत आलमियान ने आपको क्या क्या सिखाया, तो वो बताते कि मुझे मेरे नाना जान ने यही सिखाया, यहां तक आप फरमाते दुआए कुनूत मुझे मेरे नाना जान रहमत आलमियान ने सिखाई है, कुछ ऐसी चीज खा ली जिसे नहीं खाना चाहिए था, तो नाना जान थे जिन्होंने कहा बेटा थूक दो थूक दो, ये नाना जान थे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर अपने नवासों के साथ क्या आपका मतलब अंदाज मुबारक रहा, आप कि जब शहजादी की शादी हुई तो मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आपका क्या अंदाज मुबारक रहा, अपनी बेटी शहजादी बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दीगर आपकी जो शहजादियां थी उनके साथ आपका क्या अंदाज मुबारक रहा, ये पढ़ने से है ना, पढ़ेंगे तो पता चला, बोले कैसे पता चलता है बंदा कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, लकत काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे रसूल पाक की जिंदगी में बेहतरीन पैरवी है, नमूना अमल है, आप पढ़े तो सही। अजवाज मुतहरात हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, दीगर अजवाज का आपका अंदाज मुबारक क्या था, घर का अंदाज क्या था? अच्छा तिजारत पर गए, कारोबार पर गए, बिजनेस पर गए, ट्रेडिंग पर गए, इसके लिए आपने ट्रेवलिंग फरमाई, सफर फरमाया, आपका अंदाज मुबारक क्या था?
आपके साथ जो शरीक थे उनके साथ क्या था, जिनके लिए जिनका माल लेकर गए थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके ताल्लुक से, माल के ताल्लुक से, लेन देन के ताल्लुक से क्या अंदाजा मुबारक था। ये पूरी हम पढ़ेगा तो पता चलेगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके लिए, मेरे लिए और खुद नाजरीन के लिए जो मुझे देख और सुन रहे हैं। तो यू ओवरऑल अगर हम देखें तो हम में से ये सबको ये समझ लेना चाहिए, तुमसे तुम्हारे माहतियत के बारे में पूछा जाएगा। वी आर ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं हमारे, ये हमारे इस्लाम और दीन का हुसन है। अब जैसे जैसे आपकी ऑफिस ग्रेड तंजीम जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी, पानी के अंदर बंदा जितना चला जाता है ना, पानी का प्रेशर उतना ही उसके ऊपर बढ़ता चला जाता है। ये याद रखिएगा, जिंदगी स्विमिंग पूल नहीं है, जिंदगी एक बहुत बड़ा समुंदर है। आप जितनी गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना वेट उठाने की ताकत भी पैदा करें, पड़ेगा वेट। और इसके लिए दीन सीखें, इस्लाम सीखें, मजहब को सीखें, कुरान को पूरा पढ़ें। एक माइंड तो बनाए कि मैं पूरा कुरान पढ़ना चाहता हूं, मैं पूरा कुरान पढ़ना चाहता हूं, अलहमद के अलीफ से वन नास के सीन तक मैं पूरा कुरान पढ़ना चाहता हूं, मुझे यह तो है कि मेरा रब मुझे क्या फरमाता है। तो तफसीर सिरातो जिनान शुरू कर दें यार, ये पर्सनल लें, आप पर्सनल लें, कोई नहीं यार, एप्लीकेशन मौजूद हैं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। आप ऑनलाइन एडमिशन है तो कई मतलब नेट फ्रेंडली हैं, इंटरनेट फ्रेंडली लोग हैं आप, कंप्यूटर फ्रेंडली लोग हैं, मोबाइल फ्रेंडली लोग हैं आप लोग। आपके लिए तो आधा पौना घंटा नेट पर बैठकर इल्मे दीन हासिल करना प्रॉब्लम ही कोई नहीं है आपको। मैं क्या टाइम मैनेजमेंट क्या बताऊंगा, आप तो इस पर स्पीचेस करते होंगे, लोगों को समझाते होंगे, कुछ लोग तो आपसे मशवरे करते होंगे यार कैसे मैनेज कर लेते हो, जैसे हमसे लोग पूछते हैं तो आप भी हमसे पूछ रहे हैं कि लोग आपसे ही पूछते होंगे। माशरे में कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ रख रखाव तो है ना, बात बात तो होती है अभी, भले ठीक है आप अपने आप को जो भी समझें, कोई ना कोई तो समझता है ना यार, यूं निकल गए, ये पड़ गया, वो पड़ गया, ये इधर निकल गए, ये इतनी बड़ी जॉब है, इतना बड़ा, ये भी तो मजलिस भी तो एहतमाम सारा कर ही रही है ना, तो आपसे भी तो सीखने समझने वाले लोग होते होंगे। तो आपको क्या सिखाएगा बंदा, क्या समझाएगा, जो खुद आपकी अपनी फील्ड है। इसमें ये प्लस करें, अल्लाह पाक ने चाह तो जन्नत के रास्ते पर चल पड़ेंगे, हर उठता कदम, हर उठता कदम पर आपको यह फैसला करना है कि मुझे जन्नत की तरफ लेके जा रहा है कि जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। हर उठता कदम, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ आप अपने डिसीजन लें कि ये मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं जहन्नम की तरफ। अपनी थॉट, अपने एक्शन और किसी भी एक्शन का रिएक्शन हमें कहां लेकर जा रहा है, जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ, और जाना कहां है, जन्नत की तरफ, इंशाअल्लाह जन्नत की तरफ जाएंगे। और वो शरीयत और दीन का अहकाम पर अमल है जो जन्नत की तरफ लेके जाएगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल अता फरमाए, और हमारी जिम्मेदारी अल्लाह से निभाने की हमें तौफीक अता फरमाए। और ये निकी की दावत का सिलसिला अगर हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज और हमारे दीगर इदारों में अगर ये हमने सही मायनों में नेकी की दावत का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह पाक ने चाह तो आगे अभी जो भी हम हालात और वाकयात देखते हैं, परेशानियां हैं, वहां भी नेकी की दावत देनी है। लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो करें कि आने वाली जो जनरेशन है वो जब कहीं आए, कहीं बैठे, कोई खिदमत ले, तो वहां पर अमानत हो, दियानत हो, शराफत हो, इश्क हो, मोहब्बत हो, खौफे खुदा हो, नमाजें हो, इबादत हो। तो इंशाल्लाह तक कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं